سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو اب جو ہم سورہ حجرات کے تحت مضامین پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی تفسیر کے تحت ان کا تعلق جو ہے وہ مملکت کے لیول پر ہے، یعنی ایک نظام حکومت کے چلانے سے متعلق ہے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا یعنی بڑے درجے کے مضامین ہیں. عوام الناس کے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے ہمارے کام کی باتیں ہیں، لیکن اس میں دوسری طرح کی بھی ہیں کہ ہاؤ ٹو رن اے کنٹری اس لیول کی بات. تو ہم جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا، معارف و مسائل پیج نمبر 110 جلد نمبر 8 معارف القرآن، تو وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 110 معارف و مسائل میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ربط کیا ہے کہ سابقہ آیات میں، یعنی پچھلی آیات سے اس کا کیا ربط ہے. سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے. آگے عام معاشرت کے آداب و احکام ہیں جن میں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کے آداب اور باہمی حقوق کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی جو آیات ہیں ان میں تو تھوڑا سا اجتماعی لیول کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد جو آیات آئیں گی میں انفرادی لیول کی بھی باتیں ہیں آداب اور حقوق کا، اور سب میں قدر مشترک ایذا رسانی سے اجتناب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کامنالٹی ان سب میں وہی ہے کہ ہم کسی کو بھی ایذا نہ پہنچائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذا سے بات شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اب جو بات آ رہی ہے وہ امام المسلمین، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بھی جو سب سے پہلے امام تھے وہ صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام اجمعین تھے. تو اب ان آیات کے سبب نزول میں فرماتے ہیں، اچھا اس میں ایک چیز کر کے بات کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ جو انہوں نے دو الفاظ فرمایا نا، کہ ایک تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ باہمی حقوق کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو باہمی حقوق اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ان کو اگر ہم تھوڑا سا میتھمیٹیکلی دیکھیں تو یہ دو رشتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، یہ دو ہمارے تعلق ہیں جو کہ ایک ایمان والے اس زندگی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تعلق کیسا ہے، اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ تعلق، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم سے ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ہمارے برابر کے انسان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مقام اور مرتبے میں ہم سے اوپر ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ عمودی ریلیشن شپ کہلائے گی. ٹھیک ہے، یعنی ورٹیکل انگریزی میں جس کو کہیں، اور آپس میں ہمارے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے، رشتہ دار، ٹھیک ہے، ہمارے زمانے کے جو عام لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے علم رکھنے والے اور ہمارے جیسے سوشل اسٹینڈنگ وغیرہ رکھنے والے، تو ان کے ساتھ بھی ہماری ایک نسبت ہوتی ہے. اس کو ہم سطحی نسبت کہہ سکتے ہیں، سطحی یعنی ایک ہی لیول کے اوپر، انگریزی میں اس کو ہوریزونٹل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوریزونٹل نسبت اور ورٹیکل نسبت، یہ دو کنیکشنز ہر مسلمان کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں کنیکشنز امپورٹنٹ دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی ایک کی امپورٹنس کو ختم نہیں کر سکتے کہ نہیں جی ورٹیکل کی صرف امپورٹنس ہے، ہوریزونٹل کی امپورٹنس نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ جی ہوریزونٹل کی امپورٹنس ہے، باہمی تعلقات کی امپورٹنس ہے، ورٹیکل کی امپورٹنس نہیں ہے. یہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہوریزونٹل کی امپورٹنس ہے، ورٹیکل کی امپورٹنس نہیں ہے؟ یہ چیز ہم کب کہتے ہیں لوگ ہمارے جیسے جب کبھی کچھ مبالتے میں پڑ جاتے ہیں، तो वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो आपके जहन में अगर कोई मिसाल आ रही हो कि जब हम ये सोचना समझना शुरू कर देते हैं कि जी हॉरिजॉन्टल की अहमियत है, वर्टिकल में तो सब चलता है, राइट? ऐसी बातें हम कब करते हैं? इसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल की जाती है जो जो लोग इस तरह की बात करते हैं। तो क्या बात होती है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल की इंपॉर्टेंस तो रखते हैं लेकिन वर्टिकल की इंपॉर्टेंस नहीं रखते? वर्टिकल की अभी क्या मिसाल थी? नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमारा जो रिश्ता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल क्या, जो हमारा बाहिमी रिश्ता होता है, ठीक है। इसमें भी शैतान हमसे मुगालता करवा देता है। कुछ लोगों को तो जाहिर है ये करवाता है कि जी वर्टिकल ही सब कुछ है, हॉरिजॉन्टल की कोई अहमियत नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे भी मामला करता है कि हॉरिजॉन्टल की अहमियत है और वर्टिकल में सब चलता है। इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहेंगे, अगर आप लोग तो कोई लिख रहे हैं तो वेट करते हैं, क्या कहेंगे इसको? नफ्स परस्ती। नहीं, नफ्स परस्ती तो हॉरिजॉन्टल नस्बत नहीं है, तो जरा बात नहीं बनी, वो तो एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक है ना। हॉरिजॉन्टल नस्बत क्या होती है? बाहिमी रिलेशनशिप्स, बाहिमी ताल्लुकात, इंसानों के साथ क्या ताल्लुकात है, ठीक है। तो उसको अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और जो हमारे ऊपर से ताल्लुकात है उसको कम इंपॉर्टेंस देना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये बनता है कि जी हम जो अल्लाह ताला के अहकाम को, जो इबादतें हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला के दीन के अंदर जो हमें अहकाम दिए गए हैं, हम उन अहकाम की तो परवाह नहीं कर रहे लेकिन हम आपस में लोगों के साथ बहुत अच्छा मामला कर रहे हैं, ठीक है, यानी बड़े इखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह के अहकाम की जो इम्पोर्टेंस है ना वो हमारे निगाहों में नहीं है, ठीक है। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, हम हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तर्क करके हम नबी अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन हैं काफिर मुशरिक, राइट, उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम, म्यूट कर लें प्लीज, लेकिन एट द सेम टाइम हम इखलाक के साथ बड़े अच्छे से पेश आते हैं, लोगों के साथ ना बड़े इखलाक से पेश आते हैं, ठीक है ना, और कुछ उनकी खिदमत भी करने की कोशिश करते हैं, और हम ये समझते हैं कि बस यही हमारा दीन है, लोगों के साथ अदब से पेश आ जाना, इखलाक के साथ पेश आ जाना, यही हमारा दीन है ना। तो हाँ, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, ठीक है ना, ये ह्यूमैनिटी वाला जो लोग बहुत इस्तेमाल आजकल किया जाता है कि ह्यूमैनिटी इज द रियल रिलीजन, क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी इज द रियल रिलीजन, इज द रियल रिलीजन, और नऊज बिल्ला ये बात इतना आगे बढ़ जाती है, ह्यूमैनिटी इज द रियल रिलीजन वाली बात इतना फिर आगे बढ़ जाती है कि हम ये तक कहना शुरू हो जाते हैं कि रिलीजन इज द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन क्वारल्स, रिलीजन इज द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन क्वारल्स, ठीक है ना, यानी इंसान जितना लड़ते हैं ना आपस में, उस लड़ने की वजह ही रिलीजन बनता है, ये कहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हमें इतनी समझ में नहीं आती, इतनी अकल नहीं होती कि भाई रिलीजन में आपने सारे रिलीजन को एक साथ ही लपेट दिया, ठीक है ना, आपने सबको एक ही लाइन में जो है वो खड़ा कर दिया कि दीन इस्लाम भी क्वारल, यानी दीन क्रिश्चियनिटी भी क्वारल्स का सबब बनता है और जुडेज्म भी क्वारल्स का सबब बनता है और हिंदुज्म भी क्वारल्स का सबब बनता है और साथ साथ इस्लाम को भी उनके साथ लपेट दिया। तो चलो जी, फिर अब जो मॉडर्न थिंकिंग जिसको जिद्दत पसंदी कहते हैं, राइट, जिद्दत पसंदी क्या है कि जी रिलीजन्स को रखो साइड पर, ऑर्गेनाइज रिलीजन जिसको कहा जाता है, इनको रखो साइड पर और बस एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक किया करो, ठीक है। तो ये भी एक दूसरी यानी अफरात और तफरीत, ठीक है ना, तो ये भी गलत है कि हम इस तरफ इतना निकल जाएं कि हम दीनी जो तकाजे हैं, अल्लाह का जो के जो अहकाम है, नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, उनको जो है वो इग्नोर करना शुरू कर दें और उनकी अहमियत कोई ना रहे, और सिर्फ ये जी कि अच्छा अब इसमें होता क्या है, असल में हकीकत क्या हो रही होती है, ठीक है, यानी शैतान जो है वो हमें धोखे दे रहा होता है, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से धोखे दे रहा होता है। तो अब हम किस तरह की बातें करते हैं, हम ये करते हैं कि जी सम पीपल प्रेस अलॉट, ठीक है ना, इतना ज्यादा वो लोग इबादतें करते हैं बट दे ट्रीट अदर पीपल लाइक डर्ट, ठीक है, बट दे ट्रीट अदर पीपल लाइक डर्ट डर्ट, ठीक है, तो उनकी ये निबादतों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब भाई ठीक है, ये बात एक अंदाज से देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप खूब इबादतें कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर ये इबादतें जो है वो आपको कोई खास फायदा नहीं दे रही। आपके नमाजें जो हैं वो तो अदा तो हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने जब जोहर की नमाज तहारत के साथ और सही तरीके से अदा कर ली, अब जोहर साकत हो गई आपके ऊपर से। अब ये नहीं कि आपका क्योंकि इखलाक बहुत बुरा था तो इस वजह से जोहर की नमाज आपकी अदा ही नहीं हुई, नहीं, अदा तो वो हो गई, लेकिन जोहर की नमाज पढ़ने की वजह से इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये जो आपको फायदे हासिल होने थे नमाज पढ़ लेने से कि वो फोहश और मुनकरात से रोकती है, ये फायदे आपको हासिल नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग जब भाई दे ट्रीट अदर पीपल लाइक डर्ट, तो एक्चुअली जो है वो ये रहा होता है कि हम सिर्फ खुद नाराज होते हैं लोगों से कि वाई डू दीज रिलीजियस पीपल ट्रीट अस लाइक डर्ट, ठीक है ना, ये हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं, हालांकि जो है ये नमाजें भी पढ़ रहे हैं और तस्बीहात भी पढ़ रहे हैं और जो है वो रोजे भी रख रहे हैं और जाहिरी सुन्नतों के ऊपर भी अमल कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना वो हम जो बातें करते हैं ना, तो ये बातें जो है वो जस्टिफाइड नहीं होती, ये बातें जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि हम खुद भी जो है वो नमाजें ना पढ़ें, हम खुद भी जो है वो पर्दा ना करें औरतों के लिए, कि पर्दा करने वाली क्योंकि हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रही है तो इस वजह से मैं भी पर्दा नहीं करूंगी, पर्दे की अहमियत खत्म हो गई, राइट, क्योंकि पर्दे वाली मेरे साथ जो है वो बुरा सलूक कर रही है तो मैं भी पर्दा नहीं करूंगी, या कोई दाढ़ी वाले साहब जो है कुर्ता पजामा पहनने वाले जुब्बा पहनने वाले साहब जो है अगर मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं तो अब मैं जो हूँ वो दाढ़ी को काट दूंगा, राइट। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई थी काट दी, क्योंकि दाढ़ी वाले जो है ना वो अच्छे इखलाक वाले नहीं होते, अल्लाह के बंदे उनका इखलाक उनके उनके जिम्मे है, अगर वो अच्छे इखलाक वाले नहीं है तो उनको उसकी उसकी सजा मिलेगी, दुनिया में भी जो है वो लोग उनको बुरा समझेंगे, आखिरत में भी बद इखलाकी की सजा मिलेगी, राइट। इसका दाढ़ी के साथ क्या ताल्लुक है यार, है दाढ़ी अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अच्छे इखलाक वाले नहीं थे, तो अल्लाह के नबी की तरफ से तवज्जो हट गई और इतना तवज्जो जो है वो बुरे मुसलमानों के ऊपर इतनी तवज्जो फोकस हो गई कि अगर वो कोई बुरा काम करते हैं तो अब उनकी जो जाहिरी हैयत नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनी हुई थी तो उस हैयत से जो है वो एक बगावत कर दी, है उस हैयत को जो है वो बुरा समझना शुरू कर दिया और उसको बेफायदा समझना शुरू कर दिया। अल्लाह के बंदे हर सुन्नत की अपनी एक एक वैल्यू है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है, कोई बंदा अगर उस सुन्नत को जाहिरी तौर पर अडॉप्ट करके अगर उसके इखलाक बुरे हैं तो उसकी वजह से उस सुन्नत की अहमियत तो खत्म नहीं हो जाती ना, वो सुन्नत जो है वो तो बेकार तो नहीं हो जाती ना, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये जो वर्टिकल निस्बत और हॉरिजॉन्टल निस्बत, राइट, हम क्या कहते हैं कि जी हॉरिजॉन्टल मामला सबका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, खुसूसन मेरे साथ बहुत अच्छा होना चाहिए सबका मामला, ठीक है ना, मेरे साथ सबका मामला अच्छा होना चाहिए, वर्टिकल निस्बत की कोई जरूरत ही नहीं है, नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुनाह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मौसीकी को तर्क करने की कोई जरूरत नहीं, मौसीकी तो वैसे ही रूह की गजा बन जाती है ऐसे लोगों के नजदीक, जिद्दत पसंदी वाले जो होते हैं ना, जो कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले नारे लगाते हैं तो उनमें तो सबसे पहले जो मौसीकी जो है वो सबसे जबरदस्त चीज होती है, सो कॉल्ड रूह की गजा होती है वो, राइट, रूह की गजा तो वो होती है लेकिन जिस गजा को खाने से पेट खराब हो जाता है ना, ये वो वाली गजा होती है, ठीक है, पेट खराब ही तो होता है ना, पेट भर तो जाता है आप अगर ऐसी ऐसा खाना खाएं, ठीक है, जो कि स्टमक में अपसेट पैदा करने वाला हो तो क्या पेट भरता नहीं है, भूख तो मिट जाती है ना ऐसा खाना खाने से, राइट, लेकिन उसके बाद जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, दवाएं खानी पड़ती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी तो जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, राइट। तो इस तरह की जो बातें करते हैं तो फिर उनके लिए मौसीकी भी जो है वो रूह की गजा बन जाती है, ठीक है। तो वर्टिकल निस्बत और हॉरिजॉन्टल निस्बत ये दोनों चीजें अहम हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा अहम जो है वो वर्टिकल निस्बत है, ज्यादा अहम वर्टिकल निस्बत है, और वर्टिकल निस्बत में हमारे ऊपर जितने भी लोग दीनी एतबार से हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, जिनमें हमारे असातज़ा-ए-किराम, ठीक है, दीनी इल्म के अंदर हमारे असातिज़ा किराम वो भी हमारे ऊपर हैं, हमारे मशायख जो कि हमें गाइड करते हैं, हमारे मेंटर्स होते हैं वो भी हमारे ऊपर हैं, और हमारे उलमा और मशायख के ऊपर कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक तो बहुत बाद में बारी आती है, हमारे मशायख के ऊपर उनके मशायख होते हैं जिनसे उन्होंने इल्म हासिल किया, और उनके ऊपर उनके मशायख होते हैं जिनसे कि उन मशायख ने इल्म हासिल किया, उनके ऊपर उनके मशायख होते हैं, और ये सिलसिला ऑल द वे कहाँ तक पहुंचता है? ये नबी अलैहिस्सलाम तक बराह रास्त नहीं पहुंचता, ये पहले पहुंचता है सहाबा कराम तक। ठीक है, तो सहाबा कराम के की लेयर पहले आती है और उनके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की लेयर आती है, और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर फिर अल्लाह ताला की लेयर, अल्लाह ताला है, राइट। तो ये है वर्टिकल नस्बत जो कि हमारे असातिज़ा और मशायख से शुरू होकर के ऑल द वे अप अल्लाह सुब्हानहु ताला तक पहुंचती है, ये वर्टिकल नस्बत है, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल नस्बत हमारे आपस के ताल्लुकात, तो आपस के ताल्लुकात का हमने ख्याल करना है, अल्लाह ताला के बहुत अहम है, लेकिन हमने इनको जो है वो वर्टिकल नस्बत से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है ना। हर चीज का अपना एक एक, एक मुकाम एक मरतबा होता है, ठीक है ना, उसको उसके डिजर्विंग पोजिशन से नीचे नहीं गिराया जा सकता, ना उसको ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर उठाना भी गलती है, नीचे गिराना भी गलती है, जो अल्लाह ने उसको मुकाम दिया है उसी मुकाम के ऊपर रखना जरूरी है। अब सबब नुज़ूल में फरमाते हैं कि इन आयात के सबब नुज़ूल में मुफस्सरीन ने मुतअद्दिद वाक़यात बयान फरमाए हैं जिनमें खुद मुसलमानों के दो ग्रोह में बाहम तसादुम हुआ, और कोई बईद नहीं कि ये सभी वाक़यात का मजमुआ सबब नुज़ूल हुआ हो, या नुज़ूल किसी एक वाक़े में हुआ हो, दूसरे वाकयात को उसके मुताबिक पाकर उनको भी सबब नुज़ूल में शरीक कर दिया गया हो। क्योंकि सबब नुज़ूल जो है ये तो फिर जो उलमाए कराम है उन्होंने हदीस की किताबें देखी, सीरत की किताबें देखी, और अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने बताया कि अच्छा ये वाकया जो था ना ये इसका इस आयत का सबब नुज़ूल है, ठीक है। तो इस तरीके से एक आयत एक वाकया भी हो सकता है किसी आयत का सबब नुज़ूल, और कई वाकयात भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है तो कि असल में सबब नुज़ूल तो सिर्फ एक वाकया था लेकिन बाकी वाकयात भी चूंकि उन वाकयात में भी यही मामला पेश आया था तो इस वजह से उनको भी सबब नुज़ूल की बहस में ही लिख दिया गया हो। इस आयत के असल मुखातब वो उलुल अमर और मुलूक हैं जिनको क़िताल और जिहाद के वसाइल हासिल है। उलुल अमर का मतलब क्या होता है? अमर कहते हैं कमांड, ठीक है, यानी उलू का मतलब होता है वाला, तो कमांड वाला, हुक्म वाला, यानी वो शख्स के जिसके पास हुकूमत होती है, ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी जरूरी है। हुकूमत का मतलब जो है वो आज के दौर के अंदर जिसको हम हुकूमत कहते हैं फेडरल कैपिटल के अंदर जो साहब बैठे हुए होते हैं उनके पास हुकूमत होती है, ऐसा तो नहीं होता ना। हुकूमत तो हर लेवल पे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल फेडरल लेवल पे हुकूमत होती है आज के दौर में भी, और प्रोविंशियल स्टेट लेवल पर भी हुकूमत होती है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो स्टेट लेवल की भी, हर स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, हमारे यहाँ जो है प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस का एक गवर्नर होता है, ठीक है, और फिर वजीर आला वजीर आजम खाली को थोड़ी होते हैं, वजीर आला भी तो होते हैं ना। तो ये इवन पोलिटिकल सेटअप के अंदर भी हुकूमत का मतलब होता है हर लेवल के ऊपर जो हुकूमत है। तो उलुल अम्र से यहाँ पर मुराद जो है वो अथॉरिटी वाले, जिनके पास अथॉरिटी है कुछ लोगों के ऊपर कमांड करने की अथॉरिटी, ठीक है। और मुलूक से मुराद जो है बादशाह, मलिक की जमा मुलूक होता है। तो इन इनको जिहाद व कताल के वसाइल हासिल है का क्या मतलब होता है? जिहाद का मतलब होता है फिजिकल जो एफर्ट आप करते हैं, ठीक है ना, मुजाहिदा करना, यानी अगर आप बहुत ही सुकून के साथ मुसल्ले में बैठ करके दो रकअत नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, बस थोड़ी छोटी छोटी सी आपने आयतें लगाई, छोटी छोटी सी मतलब सूरतें लगाई और आपने दो रकअत नमाज पढ़ ली, ठीक है ना, तो इसको कोई मुजाहिदा नहीं कहा जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप दिन भर के थके हुए थे और उसके बाद आप जरा लेट नाइट सोए भी, और फिर उसके बाद आप जो है वो फजर के वक्त जो अलार्म लगाया था उस अलार्म की आवाज पर उठ भी गए, उठना उठा नहीं जा रहा था, आंखें जो है वो बंद हो रही थी, राइट, सख्त थकन से जो है वो बदन अभी तक चूर था, लेकिन आप उठ गए, और उठ करके फिर आपने ठंडक के मौसम में ठंडा पानी भी आ रहा था, गीजर आपका जो है वो उसको काम करना छोड़ दिया उसने, तो ठंडा पानी आ रहा था, उससे आपने वजू किया, फिर आकर के आपने दो रकत फजर की नमाज पढ़ी, अगरचे कि उसमें आपने सिर्फ दो छोटी छोटी सूरतें लगाई, लेकिन ये जो आपने फजर की नमाज पढ़ी है ना, इसको कहेंगे मुजाहिदे वाली नमाज। ठीक है ना, अगर नॉर्मल आप किसी और टाइम के ऊपर दो रकत नमाज पढ़ लेते जिसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, उसको मुजाहिदा नहीं कहेंगे, इसको मुजाहिदा कहेंगे। या ये कि आप दफ्तर के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में थे, ठीक है ना, और नमाज का टाइम हो भी गया और वो मीटिंग चलती भी रही हत्ता कि नमाज का टाइम खत्म होने का खदशा हो गया। अब वहां पर अगर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग्स को सिर्फ नमाज के चार रकत पढ़ने के लिए, जोहर की चार रकत पढ़ने के लिए छोड़ करके बाहर आ जाएंगे, तो इसको भी नफ्स के ऊपर मुजाहिदा कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एक खदशा था कि जी ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाले लोग हैं तो ये इस बात को पसंद नहीं करेंगे, ये तो काफिर हैं, ये तो मेरी नमाज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या तो ये फासिक हैं, ये तो नमाज नमाज खुद तो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो मेरे लिए उस वक्त नमाज पढ़ना जो है ना वो बड़ा मुजाहिदे का काम होगा, क्योंकि मैंने एक रिस्क लिया है। ठीक है ना, हालांकि है वही चार रकत वाली असर की नमाज या जोहर की नमाज, राइट, उससे ज्यादा जो है वो पढ़ना उस वक्त आप छोड़ भी सकते हैं, अगर सुन्नत मौकदा गैर मौकदा उस वक्त आप छोड़ दें, लेकिन चार रकत पढ़ने के लिए जो निकलना है ना, ये भी एक मुजाहिदा कहलाएगा। तो मुजाहिदा उस चीज को कहते हैं कि जिसके अंदर कुछ आपने यानी फिजिकल या मेंटल तकलीफ उठाई हो, ठीक है ना, कुछ कुछ मुजाहिदा किया हो, तकलीफ उठाई हो, उसको मुजाहिद उसको जिहाद कहते हैं। ठीक है, और किताल किस चीज को कहते हैं, किताल का मतलब होता है लड़ना, अगले बंदे से फिजिकली फाइट करना, जिस फाइटिंग के नतीजे में जान भी ली जा सकती है अगले बंदे की, ठीक है ना, इसको किताल कहते हैं, कत्ल करना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो असल में जो लड़ाई होती है ना सोर्ड्स के साथ या गन्स के साथ, राइट, या जहाजों के साथ या मिसाइलों के साथ जो भी लड़ाई होती है, उसको जिहाद नहीं कहा जाता, उसको किताल कहा जाता है, उसके लिए लफ्ज क्या है, किताल। ठीक है, तो उसको फिर जिहाद कह क्यों देते हैं, वो इसलिए सिर्फ कह देते हैं क्योंकि जिहाद की जो सबसे ज्यादा मुश्किल फॉर्म है, ठीक है, वो किताल ही है, सबसे ज्यादा जो जिसमें जिस्मानी तकलीफ और भाई जरा तस्वर करें ना, मैदान जंग के अंदर लोग तलवारों से लड़ रहे हैं, अब वो तलवार जो अगले बंदे को मारते हैं तो कोई देख के मारते हैं कि किधर लगेगी ये तलवार, है वो तलवार जो है वो उसके सीने में भी घुस सकती है, वो उसके बदन के दो टुकड़े भी कर सकती है, वो उसके सर पर भी लग सकती है, वो उसकी आंख को भी काट सकती है, आंख, इमेजिन तो करना ना जी, हमारी आंख को कोई तलवार आके काट दे, राइट, कान को भी चीर सकती है, और इस सूरत में जरूरी नहीं है कि इंसान की मौत हो जाए, जरूरी तो नहीं है मौत हो जाए, भाई जख्मी भी तो हो सकता है ना, और जिंदा भी तो रह सकता है इस हालत में कि उसके कान आंख जो है वो तलवार से कट चुके हो, कितनी अजियत होती होगी ऐसे बंदे को। और ये तो आज से चंद अरसा पहले तक, जबकि ये गन्स वंस का रिवाज नहीं था, तो सब तलवारों से ही तो लड़ते थे और ऐसी तो लड़ाई होती थी, बस अगले बंदे को बस किसी तरीके से जो है वो निटा देना होता था कि वो लड़ने का काबिल ना रह सके। अब उसको जहां भी मारना है, जैसे भी मारना है, उसको मारना है आपने, ठीक है, और उस बंदे ने अपने आप को बचाना है, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाना है। ठीक, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते इस तरह की फाइटिंग का, आजकल तो वैसे तो आजकल की जो बंदूकों वाली फाइटिंग होती है वो भी कोई बंदूक की गोली भी जो है वो कोई देख के तो नहीं लगती ना, वो भी तो जाकर के कहीं लग सकती है, कान में, आंख में, मुंह में, राइट, कहीं भी जाकर के लग सकती है। तो कताल जो होती है ये सबसे ज्यादा खतरनाक और बुरी चीज होती है, तो इस वजह से ना सबसे बड़ा जो दर्जा होता है जिहाद का वो कताल है, तो उस वजह से जिहाद के लिए यानी कताल के लिए भी जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो फरमाया कि उनके पास वसाइल होते हैं, वसाइल का मतलब क्या कि इन कामों को करने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत पड़ती है और आपको असलहे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हुकाम और उलुल अमर वो लोग होते हैं कि जिनके पास आर्मीज होती हैं और उनके पास एम्यूनेशन होता है। ठीक है ना, आर्मीज एंड एम्यूनेशन, पुलिस फोर्स भी इसमें दाखिल हो सकती है। ठीक है ना, सिर्फ मिलिट्री और रेंजर्स नहीं है, बल्कि पुलिस फोर्स के पास भी तो यानी वो भी तो आदमी होते हैं और उनके पास भी तो एम्यूनेशन होता है ना, तो जिनके पास ये होता है ना वो उलुल अमर और मुलूक कहलाते हैं। अलबत्ता उलुल अमर की तारीफ जो है वो थोड़ी सी और भी वसी है, क्योंकि उलुल अमर के अंदर जो कुरान की आयत में उलुल अमर का लफ्ज आया है ना, तो वहां की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उलुल अमर से मुराद जो है वो इल्म वाले लोग हैं, क्योंकि इल्म जो है असल अथॉरिटी जो होती है ना वो इल्म होता है, इल्म होती है। ठीक है, और इल्म की अथॉरिटी के तहत जो है वो बाकी सारी अथॉरिटीज आती है। है ना, बगैर इल्म के जो एम्यूनेशन और आर्मी वाले जो है ना वो भी अपना हुकूमत नहीं चला सकते, उनको भी इल्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जहां से वो गाइडेंस ले रहे होते हैं, बादशाह, वजीर, राइट, वजीर और बादशाह यानी वजीर आजम और प्रेसिडेंट और बादशाह, ये जहां से गाइडेंस ले रहे होते हैं ना, मशवरा ले रहे होते हैं, ठीक है ना, तो असल में तो अथॉरिटी उन मशवरा देने वालों के पास होती है। असल अथॉरिटी, जाहिरी तौर पर अथॉरिटी बादशाह सलामत के पास है, क्योंकि वो आर्मी को कमांड करते हैं, राइट, उनके पास जो है वो गार्ड्स भी हैं, पुलिस फोर्स भी है जाहिरी तौर पर। लेकिन हकीकत में हु इज रनिंग द शो, हकीकत में द एडवाइजर इज रनिंग द शो, एडवाइजर, ठीक है ना। और ये जाहिर है एक कम अकल रखने वाले को ये बात कहां से समझ में आएगी, उसके नजदीक तो बादशाह ही सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन डेप्थ में जो जाता है उसको ये पता लगता है। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अल-कहनवी ने ना डीप बात जाकर के करी है कि एडवाइजर, जैसे कहते हैं ना हम कि ही इज नॉट द किंग बट ही इज द किंग मेकर, ठीक है ना, ये किंग खुद नहीं बनता, ये तो किंग बनाता है। तो भाई बनाने वाले के पास ज्यादा बड़ी अथॉरिटी हुई कि बनने वाले के पास ज्यादा बड़ी अथॉरिटी हुई, ठीक है। तो बनाने वाला ये जो एडवाइजर होता है ये कौन होता है, ये जाहिल नहीं हो सकता, जाहिल शख्स कभी एडवाइजर नहीं बन सकता, ठीक है ना। कौन एडवाइजर बनता है, आलिम बनता है, ठीक है ना। अब चाहे वो कुरान और हदीस का आलिम किसी का एडवाइजर बन जाए, या जो दुनिया के अंदर फसाद वाले जो सारे की सारी आइडियोलॉजीज हैं उनका कोई आलिम हो, जैसे क्या थे वो कार्ल मार्क्स, राइट, कम्युनिस्ट, वहां का कौन था जी, बादशाह जो है वो तो वो था ना, क्या नाम था उसका, स्टालिन, और स्टालिन से पहले कौन था, लेनिन, राइट। लेकिन असल जो थिंकर्स थे कम्युनिज्म के पीछे वो तो ये लोग थे ना, मार्क्स, मार्क्सिज्म जिसको, जिसकी वजह से इसको कहते हैं कार्ल मार्क्स, राइट। तो असल ब्रेन्स तो ये थे, ठीक है। तो यही बात है कि आलिम चाहे अच्छा आलिम हो चाहे बुरा आलिम हो, वही असल में वही होता है, ही इज द वन हु कॉल्स द शॉट्स, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो मुफस्सिरीन है उन्होंने फरमाया कि उलुल अम्र से मुराद जो है वो असल में उलमा होते हैं, और वही जो है ना वो उमरा को और मुलूक को जो है वो एडवाइस करते हैं, ठीक है। जो उमरा और मुलूक जो है वो उलमाए दीन, उलमाए हक से मशवरा करके नहीं चलते, फिर वो जाहिलाना फैसले करते हैं, जाहिर है जाहिलाना ही फैसले करेंगे, फिर उनके पास तो ये वाला तफसीली इल्म नहीं होता कुरान और हदीस का, ठीक है, और जाहिर है फिर जाहिलाना फैसले करेंगे तो फिर खैर तो नहीं आएगी ना मुल्क के अंदर, ठीक है। तो इसके तहत फिर आगे फरमाते हैं कि बिल वास्ता तमाम मुसलमान इसके मुखातिब हैं, यानी इन लोगों के वास्ते से डायरेक्ट मुखातिब तो उलुल अमर और मुलूक है, लेकिन इनडायरेक्टली तमाम मुसलमान इसके मुखातिब हैं कि वो इस मामले में उलुल अमर की इआनत करें, मदद करें, ठीक है। जहां कोई इमाम और अमीर या बादशाह और रईस नहीं है, वहां हुक्म यह है कि जहां तक मुमकिन हो दोनों को पहमाइश करके तरके कताल पर आमादा किया जाए, और दोनों ना माने दोनों लड़ने वाले फिरकों से अलग रहें, ना किसी के खिलाफ करे ना मुआफ, ना किसी के खिलाफ करे ना मुआफ करे, कज़ाफी बयान कुरान, ठीक है। जब दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो जाए ना, तो फिर उलुल अमर को हुक्म दिया गया है कि तुम इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करो, और अवामुन नास को ये चाहिए कि इस काम के अंदर उलुल अमर की इआनत करें, ठीक है जी। कोई सवाल सो फार? अच्छा, आप अब आगे जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों के लिए, खुसूसन पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वालों के लिए बड़ी अहम हिदायात है, ठीक है। मसाइल मुतअल्लिका, इससे मुतअल्लिक मसाइल फरमाते हैं कि जी मुसलमानों के दो ग्रोहों की बाहमी लड़ाई की चंद सूरतें हो, ठीक है ना। ये सूरतें हम क्विकली पढ़ लेते हैं, इससे फिर हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आएगी। तो दो ग्रोहों की बाहमी लड़ाई की चंद सूरतें होती हैं, एक है कि दोनों जमातें इमाम मुस्लिमीन के तहत विलायत हैं या दोनों नहीं है, या एक है एक नहीं है, ठीक है ना। यानी दो जमातें जो लड़ रही हैं तो वो दोनों जमातें जो हैं वो जो मुसलमानों का मुल्क है, ठीक है, उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है तो उसके सिटीजन्स हैं या नहीं है, यानी उस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट मानते हैं कि नहीं है, कि नहीं मानते। भाई आपस में लड़ रहे हैं ना दो ग्रोह, लेकिन गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट मानते हैं वो, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं तहते विलायत हैं, ठीक है। या दोनों नहीं है, यानी दोनों ही जो है वो गवर्नमेंट को नहीं मानते, ठीक है ना, या एक मानता है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट और दूसरा गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं मानता, ठीक है। तो ये तीन सूरतें हो गई, तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। पहली सूरत में आम मुसलमानों पर लाजिम है कि फहमाइश करके उनको बाहमी जंग से रोके, ठीक है ना। पहली सूरत क्या थी कि दोनों ही जो है वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मानते हैं, ठीक है, तो इस सूरत में उनको बाहमी जंग से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। फहमाइश का मतलब होता है उनसे बातचीत करना, उनको यानी कन्विंस करना। अगर फहमाइश से वो बाज ना आए तो इमामुल मुस्लिमीन पर इस्लाह करना वाजिब, यानी पहले तो आम लोग ही उनको रोकने की कोशिश करें लड़ाई से, और अगर आम लोगों के रोकने से ना रोकें तो फिर इमामुल मुस्लिमीन के ऊपर वाजिब हो जाएगा कि इसकी इस्लाह करें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है यहाँ पे। अगर हुकूमत इस्लामिया की मुदाखलत से दोनों फरीक जंग से पास आ गए तो किसास और दियत के अहकाम जारी होंगे, यानी एक ग्रोह के बंदे ने दूसरे ग्रोह के बंदों को मार दिया होगा ना, तो किसास और दियत के जो शरीय काम है जी, उनको पैसे पे किए जाएंगे, या किसास के यानी बंदे के बदले पे बंदा जो है वो मारने वाले को कत्ल किया जाएगा, ये सारी चीजें फिर, ठीक है। किसास कब होता है, जबकि इंटेंशनल किलिंग होती है, मर्डर जिसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना मारने वाले को फिर उसके बदले में मारा जाता है, ठीक है। और अगर इंटेंशनल किलिंग ना हो बल्कि ऐसे ही जो है वो आप लेके निकले हुए थे और कुछ ऐसा मामला पेश आ गया कि अगला बंदा जो है वो कत्ल हो गया, जैसे कि कल हजरत ने भी बयान में मिसाल दी थी कि गाड़ी लेके निकले हुए थे लेकिन कोई बंदा सामने आ गया तो वो मर गया आपकी गाड़ी से, लेकिन आपका इरादा तो उसको कत्ल करने का नहीं था, तो ऐसी सूरत में दियत दी जाती है, ठीक है, यानी उसके वरसा को फिर ये बहुत बड़ी एक रकम जो है वो पे करेगा, उसको दियत कहते हैं, ठीक है। तो किसास और दियत के अहकाम जारी होंगे, यानी उन दोनों में सुलह हो गई। अब जो फाइटिंग हो चुकी थी उस फाइटिंग के दौरान जो अमवात हो गई तो उनको किसास और दियत के जरिए से सेटल किया जाएगा, लेकिन अगर बाज ना आए तो दोनों फरीक के साथ बागियों का मामला किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इमाम अल मुस्लिमीन जो है वो हुक्म दे रहा है कि तुम लोग लड़ाई को रोक दो, और दोनों इमाम की बात नहीं मान रहे, गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे, तो अब दोनों बागी कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हथियार उठा लेना जो है इसको बगावत कहते हैं, ठीक है, और वो हथियार उठाए हुए हैं, अभी तक हथियार उन्होंने नहीं छोड़े, तो उनको बागियों के साथ बागियों का मामला किया जाएगा, और बागियों के साथ फिर लड़ाई गवर्नमेंट करती है, ठीक है। एक बाज आ गया, दूसरा जुल्म और तादी पर जमा रहा, ठीक है, तादी का मतलब होता है एक्सेस, ठीक है ना, अपने हद से आगे बढ़ जाना, ठीक है, तो एक बाज आ गया हुकूमत के समझाने पर लेकिन दूसरा बाज नहीं आया, तो दूसरा फरीक फिर बागी कहलाएगा और उसके साथ बागियों का मामला किया जाएगा, ठीक है, और जिसने अताअत कबूल कर ली वो फरीक आदिल कहलाएगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट की बात जिसने मान ली उसको फरीक आदिल कहेंगे, और जिसने ना मानी उसको फरीक यानी बागी फरीक कहेंगे। और बागियों के अहकाम की तफसील कुतुब फिकह में देखी जा सकती है कि आप बागी के साथ कैसे निपटा जाता है, यूजुअली वैसे बगावत की सजा मौत ही होती है, ठीक है, तो कुतुब फिकह के अंदर तफसीलात हैं। मुख्तसर जामे हुक्म यह है कि कबल कताल उनके हथियार छीनिए जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके तौबा करने के वक्त तक कैद रखेंगे, और ऐन कताल की हालत में और कताल के बाद उनकी जुर्रियत को गुलाम या लौंडी ना बनाएंगे और उनका माल माल गनीमत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान मुल्क के शहरी हैं, अगरचे के हुकूमत की बात उन्होंने नहीं मानी लेकिन हुकूमत के खिलाफ लड़ाई नहीं करी है अभी, ठीक है, और उन्होंने जो है वो सिर्फ आपस में लड़ाई करी है, तो इस वजह से ना उनके साथ काफिरों वाला मामला नहीं किया जाएगा, कि काफिरों को गुलाम लौंडी बना लेते हैं ना, जब पीछे का सोच हो चुका है और माल उनका माल गनीमत बन जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता उनको तौबा करने तक उनके अम्वाल को भी महबूस रखा जाएगा, यानी उनसे छीन लिया जाएगा उनके अम्वाल को तौबा करने तक, और उनको खुद भी जो है वो कैद में रखा जाएगा। जब वो तौबा कर लेंगे यानी हलफ उठा लेंगे कि जी हमसे गलती हो गई अब हम ऐसा नहीं करेंगे, इसी को तौबा करना कहेंगे, क्योंकि ये जो तौबा है ना ये वो वाली तौबा नहीं है, गुनाहों वाली तौबा, ठीक है, जो कि बंदा जो है वो अकेले में अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ के साथ कर सकता है। ये तौबा का मतलब है कि ये जो इनसे गलती हुई थी, सोशल गलती जो हुई थी, इस सोशल गलती से तौबा, ठीक है, तो जब ये ऐसे कर लेंगे तो फिर उनको उनके अम्वाल भी वापस कर दिए जाएंगे। आयात मस्कूरा में जो इरशाद हुआ है फइन फात फास्तु बैनहुमा बिलअदल वअक्सतु, यानी अगर बगावत करने वाला फिरका बगावत और कताब से बाज आ जाए तो सिर्फ जंग बंद कर देने पर इक्तफा ना करो बल्कि असबाब जंग और बाहमी शिकायत के इजारे की फिक्र करो ताकि दिलों से बोझो अदावत निकल जाए, ठीक है, यानी फिर उनमें यानी और भी इस तरह की बातें करो कि जो वजूहात थी ना असल में लड़ाई की, वो वजूहात भी जो है वो क्लियर हो जाए। कोशिश करो और हमेशा के लिए भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो जाए। और चूंकि ये लोग इमाम मुस्लिमीन के खिलाफ भी जंग कर चुके हैं, इसलिए हो सकता था कि इनके बारे में पूरा इंसाफ ना हो। इसलिए कुरान ने ताकीद फरमाई कि दोनों फरीक के हकूक में अदल इंसाफ की पाबंदी की जाए, क्योंकि भाई एक फिरके ने इनमें इमाम मुस्लिमीन की बात मानने से भी इनकार किया था ना, तो हो सकता है कि भाई जो इमाम है हुकूमत जो है तो उसकी कुछ ऐसी दिल में बात आ जाए कि जी इनके साथ जो है वो फिर इम्तियाजी सुलूक किया जाए, ठीक है कि भाई ये तो वो है जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, तो इस वजह से अल्लाह ताला ताकीद कर रहे हैं इंसाफ की यहाँ पर, ठीक है, रिमाइंड करवा रहे हैं कि नहीं इंसाफ, अगर तुम्हारा नफ्स ना भी चाह रहा हो इंसाफ करना ना, फिर भी तुम इंसाफ करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बात कही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए कही थी क्योंकि ये जो तफसीलात है ना कि हुकूमत का मामला कैसे चलाया जाए, राइट, और हुकूमत जब किसी मुल्क पे कोई करता है ना तो ये आसान काम नहीं होता, ठीक है, मुल्क के अंदर हर किस्म के लोग रहते हैं, हर बंदा जो होता है उसका मिजाज मुख्तलिफ होता है, उसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। एक घर के अंदर हम देखते हैं, हमारा तो बहुत ही छोटा सा एक यानी है ना दायरा जो हमारी जिंदगी का होता है, हमारे घर के चंद लोग होते हैं, अगर अपने घर के चंद लोगों को देख ले, जरा गौर करें उनकी पर्सनैलिटीज के ऊपर, कितनी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं, एक ही माँ के बच्चों में कितनी मुख्तलिफ आदत होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, कोई खामोशी को ज्यादा पसंद करता है, कोई ज्यादा बोलने को पसंद करता है, कोई किसी चीज को पसंद करता है, कोई किसी चीज को, राइट, तो भाई एक मुल्क के अंदर कितने माओ के बच्चे रहते हैं, राइट, कितने जो है मुख्तलिफ सोशल बैकग्राउंड्स के और कल्चरल बैकग्राउंड्स के और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के और ना जाने कैसे कैसे जो है वो लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर, उस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना कितना मुश्किल काम होता होगा, ठीक है ना, तो मुल्क को कैसे चलाना है इसमें या तो हम अपनी अकल इस्तेमाल करें, ठीक है ना, या शैतान के जो हमें वो आइडियाज दे रहा होता है, शैतान के दिए हुए आइडियाज की बेसिस के ऊपर मुल्क चलाएं, या ये कि जिसने हमें ये हुकूमत दी है, जिसने दुनिया बनाई, दुनिया में अल्लाह ताला ने फिर शुब और कबाइल में लोगों को तकसीम किया, ये भी तो अल्लाह ही ने तकसीम किया ना, फिर उन शुब शुब और कबाइल, ठीक है, छोटे छोटे जो ग्रो अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए, लोगों के कबाइल बनाए, हुकूमतें यानी मुल्क बनाए, राइट, फिर इन मुल्कों के ऊपर किसी को अल्लाह ताला ने हुकूमत भी दी, ठीक है ना, ये हुकूमत जो है वो अल्लाह ताला लोगों को देते हैं, ये लोग जो हम समझते हैं ना इलेक्शन जिस चीज को कि लोग इलेक्ट करके किसी को हुक्मरान बना रहे हैं, ये हकीकत में इलेक्शन नहीं होता, ये हकीकत में क्या चीज होती है जी बताएं, थोड़े पाकिस्तानी लोग भी तो बैठे हैं ना क्लास, ये इलेक्शन नहीं होता, क्या चीज होती है ये, चाहे जैसा भी हो, धांधली हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, या धांधली की हम बात नहीं कर रहे, ये जो पॉलिटिकल सिनारियों में तो धांधली ही को कहते हैं ना, राइट, हम धांधली की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ और ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मर्दों की तरफ से जवाब आ गया, खवातीन के जवाब दें, ये सिलेक्शन होता है, ठीक है, दोनों ने जवाब दे दिया माशाल्लाह, ये सिलेक्शन होता है, इलेक्शन कोई चीज नहीं होती, इलेक्शन का मतलब क्या होगा है, जिसको के काफिर खुल के बोलते हैं, हम खुल के नहीं बोलते, काफिर क्या खुल के बोलते हैं, अगर इलेक्शन की बुनियाद पर गवर्नमेंट आती है तो फिर तो वो होगा ना जो कि काफिर बोलते हैं, काफिर क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अब्राहम लिंकन साहब याद नहीं है, हदीस तो कोई वैसे हमें याद नहीं होती, अब्राहम लिंकन साहब तो याद रहते हैं ना, तो कम से कम उनकी बात बात ही बता दें, ये क्या चीज होती है डेमोक्रेसी, काफिर क्या कहते हैं, इलेक्शन का असल मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट, ये अब्राहम लिंकन, हजरत अब्राहम लिंकन साहब का कॉल था, ठीक है, और बाकी जो अगर इसको आप उर्दू में कहना चाहें तो उसको उर्दू में कहेंगे हाकिमियत अवाम की, राइट, हाकिमियत अवाम की, तो अगर आप इलेक्शन को वैसे ही समझना चाहते हैं कि जैसा कि इलेक्शन का सिस्टम जिन्होंने राइज किया वो इसको समझते हैं, राइट, तो फिर तो हमारा ईमान किधर गया भाई, है हमारा इस्लाम किधर गया, फिर हमारी नमाजों का क्या बनेगा जी, हमारे रोजों का क्या बनेगा, हमारी तरावियों का और दुआओं का क्या बनेगा, अगर हाकिमियत अवाम की है जी, तो फिर कहाँ गया हमारा सारा का सारा ईमान जी, क्या करेंगे फिर उसके बाद। तो इस वजह से ना हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये जो हम कहते फिर रहे हैं ना, हमें तौबा करनी चाहिए इन बातों से, ये गुनाह है ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुफ्तियों का, अल्लाह ताला जजा दे कि मुफ्ती इसके ऊपर हमारे ऊपर इसकी इस बात की वजह से हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगा देते, वरना तो हमारी बीवियां छोड़ के चली जाती हैं जी कि हमारा तो निकाह टूट गया, आप तो काफिर हो गए, आपने हाकिमियत अवाम की कह करके आपने निकाह फासद कर दिया, अब मैं आप पर हराम हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अपने पैके, फिर क्या करते हम ठीक है ना। तो अल्लाह मुफ्तियों को जजाए खैर दे कि वो हम पर कुफर का फतवा नहीं लगाते, वरना हरकत तो हमारी कुफर वाली होती है ठीक है ना। तो इस वजह से हाकिमियत तो अल्लाह की है भाई ठीक है ना, हाकिमियत तो अल्लाह की है, अवाम की किधर से आ गई हाकिमियत। तो फिर इलेक्शन क्या चीज होती है, कोई चीज नहीं होती इलेक्शन, असल में तो होता ही सिलेक्शन है, चाहे धांधली के जरिए से हो चाहे जो है वो बगैर धांधली के हो। अवाम के दिल में कौन ये ख्यालात डालता है कि जी किसको वोट देना है जाकर के, ठीक है ना, ये ख्याल अल्लाह डालता है कि इसको वोट देना है जाकर के, ठीक है, जैसे कि अवाम डिजर्व करते हैं ना, वैसे ही जो है वो अल्लाह ताला दिल में डालते हैं कि इसी को जाके वोट दो। और अगर धांधली होती है तो फिर जो है वो धांधली करने वाले लोग होते हैं उनके दिल में डालते हैं कि जी इसके हक में धांधली करवानी है, ठीक है ना। ईदर वे इट इज सिलेक्शन, देर इज नो सच थिंग एज इलेक्शन ठीक है। तो भाई जब है सब कुछ अल्लाह की तरफ से, तो उस मुल्क के अंदर जो अहकाम हमने हमने नाफिज करने हैं, उस मुल्क को जिसकी रोशनी में चलाना है, वो तो अल्लाह का दीन होना चाहिए ना, अल्लाह की किताब होनी चाहिए ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत होनी चाहिए ना ठीक है। अब अल्लाह के दीन अगर हम इस पर अग्री हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि हम एग्रीड हैं कि नहीं ठीक है ना। क्योंकि ये तफसीर की क्लास चल रही है, तो इस वजह से हम एज्यूम करते हैं कि जी हम एग्रीड हैं, अच्छा गुमान रखना चाहिए, हम एग्रीड हैं कि नहीं, अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह की दी हुई हुकूमत है, तो अल्लाह का कानून चलना चाहिए राइट, कुरान और सुन्नत का कानून चलना चाहिए। अब अगला ये सवाल पैदा होता है, जरा बताए ना जी, अगर अल्लाह का की किताब का कानून चलना चाहिए और अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत का कानून चलना चाहिए, तो फिर ये उलुल अमर और मुलूक चाहे जाहिरी हो या हकीकी हो, इनको होना चाहिए ये अल्लाह का कानून, अल्लाह के नबी की सुन्नत, किसको पता होती है, किसको पता होती है ये खुवातीन, ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पता होती है, ये किसी इकोनॉमिस्ट को पता होती है, ये किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट को पता होती है, ये किसी मेडिकल डॉक्टर को पता होती है, ये किसी इंजीनियर को पता होती है, या ये किसी खिलाड़ी को पता होती है, या किसी म्यूजिशियन को पता होती है, किसको पता होता है अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तफासील। एक मुल्क चलाना है, कोई छोटा सा एक दुकान को थोड़ी चलानी है छोटी सी, है बस एक मारुफुल कुरान का एक पैराग्राफ पढ़ लिया और बस काफी है, जो कुछ लिखा हुआ था वो काफी होगा दुकान चलाने के लिए, तो किसके पास तफसील होती है, उलमाए कराम के पास तफसील होती है, उलमाए कराम के पास, जिन्होंने डेडिकेटेडली ये इल्म हासिल किया होता है ठीक है। तो जब उलमाए कराम के पास ये होती है, तो फिर हम ये बात क्यों कहते हैं कि इन मौलवी लोगों को तो हुकूमत सुपुर्द नहीं की जा सकती राइट, इन मौलवियों को क्या पता जी मुल्क कैसे चलना है, इन मौलवियों को क्या पता जी कि मामलात कैसे करने हैं, कैसे कहते हैं हम ये बात, अकल काम नहीं करती हमारे, सिंपल प्योर सिंपल लॉजिक को हम नहीं, 1 + 1 = 2 के इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते राइट, क्या मसला है हमारे साथ ये ठीक है। तो मसला तो खैर है बहुत बड़ा, लेकिन तौबा करनी चाहिए तो अल्लाह ताला उस मसले को रिमूव फरमा देंगे ठीक है। तो अब उलुल अमर और मलूक जो है, या तो बराह रास्त उलमा बिठाए ठीक है, जो कि उमूमन होता नहीं है ठीक है ना, ठीक है बराह रास्त आप उलमा ना बिठाए, हम नहीं कह रहे कि आप उलमा को उठा करके कुर्सी पे बिठा दें ठीक है ना, उलमा को जो है वो ऐवान सदर में पहुंचा दें और उलमा को जो है वो आप वजारत उज़्मा सुपुर्द कर दें, नहीं करें बेशक ना करें, लेकिन आप अगर इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, फलानी चीजें और मुल्क के बारे में अच्छा जो है वो چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے, ملک جو ہے وہ صحیح طریقے سے مینج کیا جائے, تو کم از کم آپ کو اپنی ایڈوائزری کے اندر تو ان علماء کو رکھنا پڑے گا نا, ایڈوائزری کے اندر اپنے مشیروں میں تو ان علماء کو رکھنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کے بغیر آپ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ملک چلا سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ رائٹ کہ مشاورت میں تو آپ جو ہے وہ غیر مسلموں کو لے کر کے آئے, رائٹ, جو کہ خلاف ہیں اللہ کے دین اور اللہ کے قانون کے, رائٹ, یا ایسے مسلمانوں کو لے کر کے آئے کہ جن کی زندگی میں نہ شریعت نظر آتی ہے نہ سنت نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی دور دور تک ان کو واسطہ نہیں, نہ شریعت سے نہ سنت سے, نہ پردے سے, نہ جو ہے وہ نماز سے, نہ جو ہے وہ کسی قسم کے شرعی احکام سے, رائٹ, ان کو آپ مشیر بنا دیں اٹھا کر کے, ٹھیک ہے نا, اور کہیں نعرہ یہ لگائیں کہ جی ہم نے تو ماشاءاللہ ہے نا جی, ہم نے تو جی جو وہ اسلام کے مطابق چلنا ہے, تو یہ کیا ہے یہ پھر, ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے نا یہ تو ہم یعنی کافر بھی اتنے عقل مند ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے نا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پکے ہی بے وقوف ہیں, یہ سارے کے سارے پکے بے وقوف ہیں, ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی, ٹھیک ہے نا. تو مسلمان جو عقل والا ہوتا ہے, جو دین پہ تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے, اس کو تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کیا ہے یہ ڈرامہ, رائٹ. ایون کافروں کو بھی یہ بات پتا ہے کہ صرف جو ہے نا یہ بس کہنے کی باتیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی, ٹھیک ہے. تو سمپل پیور سمپل لاجک ہے, اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آگے چلیں کہ مسئلے میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے, امام المسلمین پر لازم ہے کہ اول ان کی شکایات سنے, ان کو کوئی شبہ یا غلط فہمی پیش آئی ہو تو اس کو دور کرے, اور اگر وہ اپنی مخالفت کی ایسی وجوہ پیش کریں جن کی بنا پر کسی امام و امیر کی مخالفت شرعاً جائز ہے, یعنی جس سے خود امام المسلمین کا ظلم و جور ثابت ہو. کبھی امام المسلمین بھی تو ظالم و جابر ہو سکتا ہے نا, بڑے مشہور ہیں, کچھ ایسے گزرے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ ظلم و جور ثابت ہو جائے, تو پھر عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس جماعت کی مدد کریں تاکہ امام اپنے ظلم سے باز آ جائے, ٹھیک ہے. تو امام کو بھی ظلم سے باز رکھنے کے لیے پھر اس جماعت کی مدد کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. فساد کیے بغیر, کورس, ٹھیک ہے, فساد کی یہاں پہ وہ ترغیب نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے, ہمارے دین جو ہے وہ فساد کے بالکل خلاف ہے, لیکن ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا, ٹھیک ہے نا, ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ تو ہے نا, ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ جن سے خود امام, اچھا, تاکہ امام نے ظلم سے باز آ جائے, بشرطے کہ اس کے ظلم کا ثبوت یقینی بلا کسی اشتباہ کے ثابت ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ثبوت میں بھی بات اور زیادہ کلیئر کر دی کہ یقین کے ساتھ, گمان کے لیول پہ نہیں کہ گورنمنٹ ہے وہ ظالم ہے, بس میرا گمان یہ ہے اور کچھ باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ظالم ہے, نہیں, یقین کے درجے میں ثابت ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ اچھی طریقے سے علم کے ساتھ اور ان بائس طریقے سے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی, تب کہیں جا کر کے یقین ملتا ہے, ورنہ یقین ایسے نہیں مل جاتا, صرف سنی سنائی باتوں پر یقین ہی مل جاتا, رائٹ. یقین کیسے ملتا ہے جی؟ یقین مشاہدے سے ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, یقین جیسے قیامت کے اوپر یقین جو ہے وہ مشاہدے سے ملتا ہے, اور مشاہدہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں, تو ان کا ایمان قیامت پر یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی بات کے یقین کے لیول پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ وہ جو سنی سنائی بات تھی وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے, تب یقین حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر کہیں جا کر کے آپ جو ہے وہ امام کو اس کے ظلم سے باز رکھنے کے لیے پھر اقدامات کر سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. کیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہہ سکتے ہیں بھائی؟ وہ جنہوں نے یہ نام رکھا تھا نا, اصل میں وہ خود اتنے بڑے اللہ کے ولی اور علماء تھے کہ ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی سمجھ کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے نا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے ادھر اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر, اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, اور شاید علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شروع میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی تھے, ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے جب اکابرین موجود ہوں تو پھر ہم جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کی بات جو ہے وہ की समझ जो है वो हमारी समझ ज्यादा वसी है। तो फिर हम गुमान के ऊपर फैसला करते हैं कि हाँ गुमान हमारा ऐसे ही है और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह होगा। बहरहाल तो यानी कि ये है कि भी इस्लामिक कहने के ऊपर हमें गुनाह मिलेगा कि नहीं गुनाह मिलेगा, नहीं हम तो आगे पेश कर देंगे ना कि अल्लाह आप अपने रहनुमा से पूछिए ना हमसे आप क्या पूछ रहे हैं, हम तो इनकी इत्तबा कर रहे थे, हम तो इनकी तकलीद कर रहे थे। हमारे हजरत भी जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे ओपिनियंस रखते हैं इस मुल्क के बारे में, ठीक है। तो हमारे ऊपर से ये जिम्मेदारी खत्म की जी अब हम इस्लामिक कहें तो गुनाहगार बनेंगे या नहीं कहें तो फिर ये क्या होगा, ये हमारा मसला नहीं है। अच्छा अगर कोई ऐसी वाज वजूह अपनी बगावत और अदम इताअत की बयान ना कर सके और इमाम मुस्लिमीन के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाए तो मुसलमानों को इनसे कताल करना हलाल है, और इमाम शाफी ने फरमाया कि जब तक वो खुद कताल शुरू न करें उस वक्त तक मुसलमानों को इनसे कताल की इब्तिदा करना जायज नहीं है। ये हुक्म उस वक्त है जब इस जमात का बागी और जालिम होना बिल्कुल यकीनी और वाज हो जाए, और अगर सूरत ऐसी कि दोनों फरीक कोई शरी हुज्जत रखते हैं और ये मुतय्यन करना मुश्किल है कि इनमें कौन बागी है कौन आदिल है, वहां जिस शख्स को किसी एक के आदिल होने का जन्न गालिब हो वो उसकी मदद कर सकता है और जिसको किसी जानिब रुझान ना हो वो दोनों से अलग रहे, जैसा कि मुशाजराते सहाबाए कराम के वक्त जंगे जमल और सिफीन में पेश आया, ठीक है। तो ये जो दो मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान लड़ाई का मामला है ना, तो इस मामले की भी तफसील जो है वो हमारे लिए समझना आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मामला जो है वो पहले भी पेश आए और आज भी पेश आ सकते हैं, कल भी पेश आ सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक, पब्लिक मींस पावर विद पीपल, दैट्स द डाउट। ओ रिपब्लिक, अच्छा जी मुझे इस लफ्ज की इतनी तहकीक पढ़ा तो खैर मैंने भी था, लेकिन हाँ आपने जो पॉइंट करवाया है तो उसका खैर मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन अगेन मैं वही बात कहूंगा कि जी जो जो बड़े हैं तो वो ज्यादा गहरा इल्म रखते हैं तो उनको रिपब्लिक का भी तर्जुमा पता होगा, इस्लामी जमहूरी है पाकिस्तान। हाँ ये अलबत्ता कह सकते हैं कि जमहूर, ठीक है, लफ्ज जमहूर की तहकीक तो हमने करी है ना अपनी क्लासों के अंदर कि जमहूर से इस्लामी मुराद क्या होती है, क्योंकि जमहूर का लफ्ज आता है तफसीर के अंदर भी, अभी भी शायद पीछे भी आया था, ठीक है। तो आप किस लफ्ज को बोलते नहीं है लेकिन मुराद तो आपकी होती है ना, तो आप जमहूर जब इस्लामी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं शरिया कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं तो वहां पर जमहूर उलमा मुराद, ठीक है। तो जमहूरियत का लफ्ज कहते हैं ना जी इस्लामी जमहूरियत या इस्लाम में भी जमहूरियत है, तो वहां पे कौन सी वाली जमहूरियत होती है, उलमा की जमहूरियत, उलमा की अक्सरियत देखी जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर बोला जाए तो उसमें भी अगर मुराद ये ले रहे हैं कि जी जो उलमा की जमहूरियत वाला ये पाकिस्तान होगा तो फिर ठीक है, लेकिन वो घोड़े गधे वाली जमहूरियत वाली बात होगी तो फिर जाहिर है फिर वो इस्लामी जमहूरियत नहीं होती है, ठीक है। तो फिर वो नियत के ऊपर आ गया कि भी नियत क्या है आपकी, इस अंदाज से बोल रहे हैं उलमा जो है वो वाली नियत करते होंगे और बाकी लोग जो है जो नहीं समझते इस कॉन्सेप्ट को वो दूसरी नियत करते। तो मुशाजरात सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मुशाजरात के पहले लफ्ज को, क्योंकि ये मामला सहाबा कराम के दरमियान पेश आए थे और ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल हमारे ध्यान में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसकी जरूरत हमें अपने लिए भी है कि हमारे दिलों के अंदर कोई गलत तसव्वुरात ना आ जाए सहाबा कराम के बारे में, हमारा अकीदा खराब ना हो जाए सहाबा कराम के बारे में, ठीक है। और साथ साथ एक और भी आपको बात बताता चलूं, शायद आपने से कुछ को पता भी हो कि आज के दौर में कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करी जा रही हैं कि मुसलमान जो है ना वो अपने दीन से और ईमान से बिल्कुल ही फारिग हो जाए, ठीक है। तो अब ये सिर्फ बड़ों के लेवल पर तो नहीं की जा रही है, ये बच्चों के लेवल पर भी की जा रही है। तो हम जानते हैं कि कुछ स्कूल्स मुसलमानों के स्कूल्स जहां पर के सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल्स के अंदर 7वीं ग्रेड की किताब के अंदर मुशाजराते सहाबा को डाल दिया गया है कि सहाबा में लड़ाइयां हुई थी, जंगें हुई थी, ठीक है ना। अब सहाबा में जो जंगें हुई थी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना आसान काम नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी के लिए इसको समझना आसान काम नहीं है कि भाई ये क्या हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता और जिनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत और मोहब्बत कायम करी थी, इन्होंने किताल कैसे कर लिया आपस में, ये क्या हो गया है। तो इस किस्म के जो सवाल पैदा होते हैं तो फिर ये सवाल शैतान के हाथ में जो है ना वो बहुत जबरदस्त किस्म का एक हथियार आ जाता है और फिर उसको वो खूब एक्सप्लॉइट करता है और फिर वो कहता है कि भाई ये किस किस्म का दीन हुआ फिर, राइट, ये क्या फायदा हुआ, राइट। और इस तरीके से दीन के खिलाफ भी बातें डालता है, ठीक है, कि भाई ऐसे दीन का क्या फायदा जो कि एक दूसरे का खून बहाने से नहीं रोक सका इन लोगों को, और दूसरी तरफ क्या डालता है कि दीन तो बड़ा अच्छा था, नहीं दीन में कोई मसला नहीं था, लेकिन इन लोगों का सारा मसला था कि ये नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला ऐसे थे कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इस वजह से और दुनिया की खातिर और कुर्सी की खातिर लड़ पड़े आपस में और ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना। तो दीन तो बड़ा अच्छा है जी, ठीक है ना, ये भी तो उसका एक एक हथियार होता है ना, उसका एक एक गुर ये भी होता है, दीन अच्छा है लेकिन इन लोगों ने उस पर अमल करके नहीं दिया, तो वो इनडायरेक्टली फिर वो लोगों के खिलाफ बदगुमान करके फिर उसके बाद दूसरा उसका हमला होता है दीन के ऊपर। कभी वो कुछ लोगों के साथ पहले ही हमला दीन के ऊपर डायरेक्टली करता है, ये वो लोग होते हैं जिनका दीन वालों से कोई ताल्लुक नहीं होता, दीन वालों को कुछ नहीं समझते वो वैसे ही, तो वो तो वैसे ही सिर्फ और सिर्फ दीन की बात करते हैं, किताबी दीन। तो उन लोगों को जो पहला हमला शैतान करता है वो डायरेक्ट दीन के ऊपर करता है कि ऐसे दीन का क्या फायदा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दीन वालों को कुछ समझते हैं, कुछ अहमियत देते हैं दीन वालों को, हाँ भाई ये दीन इतना अच्छा है कि देखो इतने अच्छे अच्छे दीन वाले इसने प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों पर शैतान जो है ना वो दो स्टेप्स में हमला करता है, पहला हमला उसका दीन वालों पर होता है, ठीक है ना, दीन वालों को बुरा बना करके पेश करता है, और फिर उसके बाद जब दीन वाले बुरे बन जाते हैं ना फिर दूसरा हमला जो है वो दीन पर करता है, ठीक है। तो इस वजह से सहाबा कराम जो है ये तो पहले दीन वाले हैं, ठीक है ना, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम सलाम के जो शागिर्द थे और इस दीन को हम तक पहुंचाने वाले जो वसीला बने वो सहाबा कराम थे। तो सहाबा कराम इस उम्मत के सबसे पहले उलमा थे, कौन थे ये, इस उम्मत में जो सबसे पहले उलमाए कराम हैं वो सहाबा कराम थे, क्योंकि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी लगा करके उलूम सीखे, ठीक है ना। कुछ ने जो है वो तफसीर के उलूम बहुत ज्यादा उससे सीखे इन्हिमाक के साथ, कुछ ने जो है वो हदीस के उलूम बहुत इन्हिमाक के साथ सीखे, कुछ ने जो है वो फिकह के उलूम जो है बहुत ही ज्यादा गौर और खौज करके और फिकह के अंदर जो है उन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाकी जो सहाबा थे उन्होंने हदीस फिकह तफसीर इनके उलूम नहीं सीखे, लेकिन उन्होंने ओवरऑल सुन्नत को सीखा, ओवरऑल राइट, नबी अलैहिस्सलाम सलाम की एक एक बात को वो नोट करते थे, गौर से देखते थे और उसको अपने अमल में लेकर के आते थे, जब अमल में आते थे तो उनके अमल को देख करके दूसरे लोग सीखते थे, यानी सारे सहाबा ही आलिम है, ठीक है ना। कोई एक ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आलिम है और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा आलिमा थी, भाई वो तो ऊंचे दर्जे के आलिमा थी, ये तो ऊंचे दर्जे के आलिम थे, लेकिन बाकी सहाबा भी आलिम थे, ठीक है ना। उन्होंने दीगर सुन्नतों के अंदर जो है वो तखस्सुस फि सुन्ना किया, उन्होंने इन्होंने तखस्सुस फिल हदीस किया, इन्होंने तखस्सुस फिल तफसीर किया, इन्होंने तखस्सुस फिल फिका किया, औरतों के मसाइल की फिका में तखस्सुस किया, राइट। लेकिन बाकियों ने तखस्सुस फि सुन्ना किया, राइट। तो तखस्सुस फिल सुन्ना करने वाला भी तो आलिम है ना, क्योंकि आलिम की क्या डेफिनेशन समझाई आपको कई बार, आलिम वो होता है जो कि मुजाहिदा करके कुर्बानियां दे करके फुल टाइम डेडिकेशन के साथ इल्म हासिल करता है, उसको आलिम कहते हैं। पार्ट टाइम इल्म हासिल करने वाला, राइट, वो आलिम नहीं कहला सकता, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है, इंजीनियर होता है, क्योंकि फुल टाइम वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा होता है, फुल टाइम वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा होता है, फुल टाइम वो डॉक्टरी पढ़ रहा होता है, या फुल टाइम वो घर की का इंतजाम करने वाली औरत होती है, ठीक है ना। तो फुल टाइम इज द की हियर, ठीक है। अब यह है कि सहाबा कराम तो अव्वलीन उलमा थे, ठीक है ना। तो सहाबा कराम की डिग्निटी और सहाबा कराम की जो रेपुटेशन है उसको सेफ प्रोटेक्ट करना ये उलमा की जो डिग्निटी है और उनके रिस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना ही है, ठीक है ना। तो उलमा के बारे में तो वैसे भी इन जनरल हम बहुत बात करते रहते हैं, तो भाई जो सबसे अव्वलीन उलमा थे तो उनके बारे में क्यों ना बात करें, तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले अभी चूंकि वक्त तकरीबन खत्म हो गया है तो पहले अभी बस ये बता देते हैं कि लफ्ज मुशाजरात क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो सहाबा कराम के दरमियान फिजिकल फाइटिंग हुई थी उसके लिए, ठीक है, उसके लिए तो किताल का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है ना, जंगो जिदाल का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, मुशाजरात का लफ्ज क्यों हमारे उलमा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुशाजरात का लफ्ज जो है वो शजर से निकला, ठीक है ना। शजर दरख्त को कहते हैं और दरख्त के अंदर एक तो होती है, सबसे पहले तो होती है जड़। जड़ से क्या चीज निकलती है? तना, ठीक है ना। और तने से जो निकलती हैं शाखें, ठीक है, ब्रांचेस। मुशाजरात का जो लफ्ज है उसका मतलब होता है ब्रांचेस, शाखें। लेकिन ये जो शाखें होती हैं एक ही दरख्त की शाखें होती हैं, इनका तना एक ही होता है, इनकी जड़ एक ही होती है। जड़ ईमान है, तना जो है वो सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। हर चीज सुन्नत से मिली है हमें, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, माँ के साथ कैसे रहना है। माँ से मुराद वहां पे नबी अलैहिस्सलाम की जो जो दूध पिलाने वाली माँ थी, ठीक है, और उन और बहन के साथ कैसे रहना है, और मुआशरे के साथ कैसे रहना है, ठीक है ना। सब कुछ तो सुन्नत है ना, सभी कुछ तो सुन्नत है। तो तना जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की गोया के जाते मुबारका, उसवाए हसना, सुन्नत, जो भी आप कहना चाहें उसको, ठीक है, उसमें से ये शाखें निकली थी जो कि सहाबा कराम, ठीक है ना। अब शाखें जो दरख्त की होती हैं उन शाखों के दरमियान तो इख्तलाफ होता है, राइट। एक शाख मोटी, एक शाख पतली, एक शाख टेढ़ी, एक शाख सीधी, एक शाख ऐसी, एक शाख के ऊपर पत्ते लगे हुए, एक शाख के ऊपर ज्यादा पत्ते लगे हुए, एक शाख के ऊपर पत्ते ही नहीं लगे हुए हैं, एक के ऊपर जो है वो फूल निकल आया, दूसरे के ऊपर फूल ना निकला। तो शाखों में तो इख्तलाफ होता है, लेकिन ये शाखें जो है चूंकि एक ही दरख्त के तने से निकल रही होती है, इस वजह से ना ये एक ही गोया के माँ के बच्चे होते हैं, एक ही खानदान के फर्द होते हैं। इनके दरमियान इख्तलाफ होता है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कल बात हुई थी है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, ठीक है ना, ईमान वाले भाई भाई होते हैं, बेशक उनमें इख्तलाफ क्यों ना हो जाए। भाई के रिश्ते से तो नहीं निकले ना, कितने ही इख्तलाफ क्यों ना हो जाए, भाई का रिश्ता फिर भी रहता है, क्योंकि ईमान सलामत रहा सबका, ठीक है। तो मुशाजरात साहबा इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकीदे के हिफाजत के लिए खुसूसन, और दीन की ओवरऑल हिफाजत के लिए इसको समझना और इसमें जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बाकायदा उभारी जाती हैं। हमने तो शायद अपनी जिंदगी में कभी इस मौजू को डिस्कस ही ना किया हो ना, कभी कन्फ्रंट ही ना किया हो हमें किसी ने, शायद किसी ने कन्फ्रंट ना किया हो कि जी तुम्हारे दीन में ये सब कुछ क्यों हुआ था, राइट। हमें अपने स्कूल में इस्लामियात की किताब में या सोशल स्टडीज की किताब में कभी पढ़ाया गया था मुशाजरात साहबा, राइट, कभी नहीं पढ़ाया गया था ना। लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और किसी खास प्लान और मंसूबे के तहत पढ़ाया जा रहा है, तो उनके दीन का क्या बनेगा, उनके अकीदे का क्या बनेगा, राइट। तो हमने उनका अकीदा बचाना है ना, टीचर क्या बचाएगी, टीचर को क्या पता उसको, वो तो वैसे भी आलिमा नहीं होती, वैसे भी जो है पता नहीं उसका दीन किस लेवल का दीन है, है? वो खुद ही जो है वो पता चला साहबा से नफरत करने वाली अगर निकल आई तो उसने क्या साहबा को डिफेंड करना है आपके बच्चों के स्कूल में, ठीक है, तो आप ही ने डिफेंड करना होगा ना फिर, ठीक है। तो इस वजह से इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई सवाल है अभी के लिए तो पूछ लीजिए। ये कोर्स में ऐड करने वाले कौन है? तो आप मुझे क्या पता कौन है, जो कोर्स बनाने वाले वही ऐड करते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोर्स किसी ने बनाया और ऐड किसी और ने कर दिया। जाहिर है जो उन्होंने कोर्स बनाया है वो ऐड करने वाले या तो एक ही लोग हैं, या ये कि कोर्स किसी ने बना लिया फिर किसी और ने उनके साथ शामिल होकर के या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल करके ऐड करवाया। भाई जो भी हैं कम अज कम मुलहिद तो एटलीस्ट होंगे ना, राइट, एटलीस्ट जो है यानी जाहिरी मुसलमान होंगे लेकिन दीन से खेलना चाहते होंगे, राइट, या उनको कुछ अकल समझ नहीं होगी, इतने बेवकूफ़ होंगे कि समझते होंगे कि नहीं 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 सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना, राइट, इतने अल्लाह ने अकल उनकी यानी अकल मार देते हैं ना जिसको, ठीक है, तो वो यानी बड़े सिंसियरली ये समझते हैं कि नहीं जी सब कुछ पता होना चाहिए। अब बच्चों को नौज बता, मैं आपको कह चुका हूँ ये बच्चों की क्लास नहीं है ना, तो बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है, ये लिखा ही था क्लास के इंट्रोडक्शन में कि ये एडल्ट के लिए है, ठीक है। तो अब बच्चों को सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट, बच्चों को जो है वो जिस्म के बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट, उनको ये भी होना चाहिए वैसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, राइट, यानी तो अब ये भी कुछ लोगों के सोच होती है और वो अपने खैरख्वाही में ये सोच रखते हो, ठीक है ना, लेकिन उनको समझ नहीं होती है असल में, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे भी हों कि जी खैरख्वाही उनके दिमाग में किसी शैतान ने डाल दी हो कि मुशाजरात सहाबा के बारे में भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी समझ नहीं है कि भाई दिमाग जो होता है ना वो मेच्योरिटी लेवल्स होते हैं, हर लेवल के ऊपर आप सारी चीजें नहीं उंडेल सकते। आपके बच्चे की मेच्योरिटी लेवल अगर सब कुछ है, 12 साल की उम्र में उसकी मेच्योरिटी लेवल कामिल हो चुकी है, तो फिर आप उसको इंजीनियरिंग जो है वो पीएचडी लेवल की क्यों नहीं पढ़ाते, आप उनको मेडिकल साइंस, खैर मेडिकल साइंस तो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको मजे की बात बताऊं, ठीक है, हमारे एक जाने वाले डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि सिक्स ग्रेड और सेवेंथ ग्रेड की किताबों के अंदर मेडिकल साइंस में ऐसी ऐसी तफसीलात बताई जा रही हैं बच्चों को जो कि मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ी थी, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, राइट, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ी थी, और ये तफसीलात सिक्स ग्रेड के बच्चे को पढ़ाई जा रही है। वो कौन सी तफसीलात होती है? अच्छा, इंजीनियरिंग में ये नहीं है, इंजीनियरिंग में बीई वालों के लेवल पे जो चीज पढ़ाई जाती है वो नहीं पढ़ाई जा रही है सिक्स ग्रेडर को, राइट, मेडिकल साइंस में पढ़ाई जा रही है। क्या मतलब है इसका, है मेडिकल साइंस में क्या क्या पढ़ाया जाता है? बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है ना, राइट, फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है ना, किसके साथ क्या होता है, क्या होता है, बच्चा कैसे पैदा होता है वगैरह, राइट, तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इतनी सतल नहीं है, लेकिन है लोग माशाल्लाह, कुछ लोग तो जो है वो तो जाहिर है उनकी नीयत ही खराब होती है, और कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि उनकी खराबी नीयत, खराब नीयत को जो है वो समझ नहीं सकते हैं कि इसकी वजह से क्या बनेगा बच्चे का। मेच्योरिटी लेवल जब इतना कम होगा और उसके ऊपर आप ये सब कुछ जो है वो उसके ऊपर लोड कर देंगे तो क्या बनेगा उसका। इंडिया में कई स्कूल में इस्लामिक स्टडीज के टीचर्स कादियानी और शियानी, पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, हमारी अपनी इस्लामियात के टीचर, पता है क्या थी, हमारी अपनी इस्लामियात के टीचर स्कूल में कादियानी थी, और ये आज से कितने 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आप, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, ये स्कूलों के हवाले करके दीन की हिफाजत नहीं होती है, माँ बाप ने खुद दीन को समझना होता है और खुद अपने बच्चों के दीन की हिफाजत करनी होती है, ठीक है ना। ना तो आप किसी स्कूल के हवाले कर सकते हैं, ना आप किसी शेख के हवाले कर सकते हैं कि जी शेख साहब जो है मेरे बच्चे के दीन की बात करें, आप शेख हैं, आप हैं बच्चों के शेख, ठीक है ना। What will be the first step to tackle such education system for awam? भाई अगर इंडिया में बात करते हैं, यही पाकिस्तान के अंदर, तो इसका एक तो ये हल है कि आप खुद शेख बने अपने बच्चों के, ठीक है ना, और बच्चों के साथ वैसा मामला करें जैसे शेख जो है वो अपने मुरीद के साथ मामला करता है, ठीक है ना, उसकी एतिकाद, अकीदे की और उसके अमल की इसलाह, और उसको गुनाहों से बचाने के लिए उसकी जो एजुकेशन करनी होती है ये करें। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं इस दौर के अंदर वो ये कि अपने एजुकेशन सिस्टम्स बनाएं, ठीक है ना, अपने स्कूल्स या उलमा के जो स्कूल्स हैं उनको असिस्ट करें, ठीक है ना, उनको प्रमोट करें ताकि वहां पर जो है वो इनका अकीदा, ईमान और इखलाक भी, सिर्फ ये नहीं कि अकीदा ईमान महफूज रहे उलमा के स्कूल्स में जाकर के और इखलाक जो है वो ज्यादा बदतर हो जाए, जैसे कि पहले बात भी हो चुकी है इस टॉपिक पर, नहीं, अकीदा, ईमान, आमाल और इखलाक सबकी हिफाजत हो सके, ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स को हमें असिस्ट और प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं।